एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी शख्सियत के जीवन में गहरे उतर रहे हैं जिनका नाम अमेरिकी इतिहास में बल्कि दुनिया के इतिहास में बहुत सम्मान से लिया जाता है, अब्राहम लिंकन।
जी हाँ, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति।
और हम बात करेंगे डेविड हर्बर्ट डोनाल्ड की लिखी उनकी मशहूर जीवनी लिंकन के बारे में। यह किताब लिंकन को सिर्फ एक महान नेता की तरह नहीं देखती।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उन्हें एक ऐसे इंसान के तौर पर देखती है जिसे घटनाओं ने, परिस्थितियों ने गाड़ा।
हाँ, आमतौर पर लिंकन की छवि कैसी होती है, एक हीरो की जिसने अमेरिका को बचाया, गुलामी खत्म की।
बिल्कुल, एक महान मुक्तिदाता, संघ का रक्षक। लेकिन डोनाल्ड की किताब एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा करती है।
वो पूछती है, भाई ये कैसे हुआ, एक साधारण पृष्ठभूमि का वकील केंटकी की गरीबी से निकला हुआ।
हाँ, स्वभाव से थोड़ा रूढ़िवादी, कानून का बहुत सम्मान करने वाला वो आदमी अमेरिका के सबसे बड़े संकट के समय, गृह युद्ध के समय कैसे देश का नेतृत्व कर पाया और लाखों गुलामों को आजाद करने वाला क्रांतिकारी कैसे बन गया?
क्या कोई सीक्रेट प्लान था उनके पास?
यही तो सवाल है। किताब कहती है शायद नहीं, कहानी कुछ और है।
और यही बात मुझे इस किताब की बहुत खास लगी। डोनाल्ड कहते हैं कि लिंकन की असली ताकत कंट्रोल में नहीं थी, मतलब वो घटनाओं को चलाते नहीं थे हमेशा।
सही कहा, उनकी ताकत थी घटनाओं को समझना, उनके साथ आप कह सकते हैं बहना, और फिर सही मौके पर सही रिएक्शन देना।
इसी को उन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी कहा है, नकारात्मक क्षमता।
हाँ वही, ये कीट्स का शब्द है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है कि हर चीज को फौरन सुलझाने या बदलने की कोशिश ना करना, कभी कभी सिचुएशन को समझना, उसे पकने देना जरूरी होता है।
अच्छा, ये तो लीडरशिप का एक बिल्कुल अलग नजरिया है।
बिल्कुल, ये लिंकन को किसी देवता की तरह नहीं बल्कि एक जटिल इंसान की तरह दिखाता है जो हालात से जूझ रहा था, सीख रहा था।
तो ये किताब इस बात पे जोर देती है कि घटनाएं लिंकन को बना रही थी उतना ही जितना लिंकन घटनाओं को दिशा दे रहे थे।
हाँ, एक तरह का दो तरफा रिश्ता था। चलिए इसी नजरिए से उनके जीवन की इस यात्रा को थोड़ा और समझते हैं।
जरूर, तो शुरुआत उनके प्रारंभिक वर्षों से करते हैं। उनके बचपन ने, शुरुआती अनुभवों ने उन्हें कैसे घड़ा?
देखिए, लिंकन का जन्म 1809 में केंटकी में हुआ था और माहौल बेहद गरीबी का। बचपन बीता इंडियाना और इलिनॉइस की सीमांत इलाकों में, मतलब तब वो इलाके आज ऐसे नहीं थे, जंगली थे, कम विकसित, जिंदगी बहुत कठोर थी, मेहनत वाली,
और शायद मौके भी कम थे,
बहुत कम। फिर छोटी उम्र में ही माँ गुजर गई, ये उनके लिए एक बड़ा बड़ा सदमा था। लेकिन फिर उनकी सौतेली माँ आई, सारा बुश जॉनस्टन।
हाँ, उनका जिक्र आता है।
और उन्होंने लिंकन को बहुत प्रोत्साहित किया पढ़ने लिखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए।
तो मतलब फॉर्मल स्कूलिंग भले ही कम रही हो, सीखने की इच्छा जबरदस्त थी।
जबरदस्त, उनमें वो पढ़ने की, खुद को बेहतर बनाने की एक अजीब सी भूख थी, किताबें मांग मांग कर पढ़ते थे।
और इसी दौरान उनके राजनैतिक विचार भी बनने लगे, विग पार्टी का जिक्र आता है।
हाँ, विग पार्टी उस समय की एक अहम पार्टी थी, वो आर्थिक तरक्की, समाज में व्यवस्था और सबसे जरूरी कानून के शासन पर बहुत जोर देती थी।
अच्छा,
और ये कानून का सम्मान वाला विचार लिंकन के साथ हमेशा रहा। गुलामी को लेकर उनकी जो नापसंदगी थी वो शायद इसी माहौल से आई, और उनका परिवार भी गुलामी मुक्त इलाके में ही रहता था, तो उन्होंने शायद उसके बुरे असर देखे होंगे।
ठीक है, तो ये तो हुई बचपन की बात, अब आते हैं उनके उत्थान और संघर्ष पर, कैसे वो एक वकील बने, राजनीति में आए।
वो इलिनॉइस के न्यू सेलम नाम की जगह आए, वहां उन्होंने कई तरह के काम किए, पोस्टमास्टर, सर्वेयर, दुकान चलाई, और साथ साथ सबसे अहम, खुद ही कानून पढ़ा,
खुद से।
और फिर वो इलिनॉइस राज्य विधायिका के लिए चुने गए, यही उन्होंने राजनीति की ABC सीखी। बाद में स्प्रिंगफील्ड चले गए और वहां एक सफल वकील बने।
उनकी ईमानदारी के काफी चर्चा होती थी, है ना?
जी बिल्कुल, ऑनेस्ट एब का नाम पड़ गया था। उनके लॉ पार्टनर थे विलियम हर्डन, जो काफी लंबे समय तक उनके साथ रहे।
लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में उनका पहला अनुभव, कांग्रेस का कार्यकाल, वो बहुत सफल नहीं रहा।
नहीं, ज्यादा सफल नहीं रहा। वो 1847 से 49 तक अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में रहे। उन्होंने मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध का विरोध किया था, जो उस समय ज्यादा लोकप्रिय नहीं था।
तो उन्हें लगा कि बस नेशनल पॉलिटिक्स खत्म।
हाँ, उन्हें ऐसा ही लगा। वो काफी हद तक निराश होकर वापस अपनी वकालत में लग गए थे। कई साल वो राष्ट्रीय राजनीति से लगभग दूर ही रहे।
तो फिर वो कौन सी चिंगारी थी, कौन सा मोड़ आया जिसने उन्हें दोबारा खींचा?
वो चिंगारी थी 1854 का कैंसस नेब्रास्का एक्ट। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था।
क्या था ये एक्ट?
इस कानून ने पुराने मिसूरी समझौते को पलट दिया।
वो समझौता नए पश्चिमी इलाकों में गुलामी के विस्तार को रोकता था।
हाँ, इस एक्ट ने कहा कि अब उन इलाकों के लोग खुद तय करेंगे कि गुलामी रखनी है या नहीं। इसे लोकप्रिय संप्रभुता कहा गया
और इसे लाने वाले उनके पुराने प्रतिद्वंद्वी स्टीफन डगलस थे।
हाँ, डोनाल्ड बताते हैं कि इस एक्ट ने लिंकन को जैसे अंदर तक झकझोड़ दिया। उनकी गुलामी विरोधी भावना तो थी, लेकिन ये उनके विग वाले कानून व्यवस्था और समझौतों के सम्मान वाले विचार पर भी चोट थी।
तो इसने उन्हें दोबारा एक्टिव कर दिया।
बिल्कुल, एक नए जोश के साथ, एक साफ मकसद के साथ, गुलामी के विस्तार को रोकना है।
और यहीं से वो मशहूर लिंकन डगलस बहसें शुरू हुई।
हाँ, 1858 में इलिनॉइस में सीनेट सीट के लिए चुनाव था। लिंकन बनाम स्टीफन डगलस, 7 बहसें हुई पूरे राज्य में
और ये बहुत मशहूर हुई।
बहुत। लिंकन चुनाव तो हार गए वाला।
हाँ, हार गए थे,
लेकिन इन बहसों ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला दी। उन्होंने गुलामी के विस्तार के खिलाफ बहुत मजबूती से अपने तर्क रखे। डगलस के लोकप्रिय संप्रभुता के तर्क को नैतिक रूप से खोखला साबित करने की कोशिश की।
उन्होंने खुद को किस तरह पेश किया? क्या वो गुलामी खत्म करने की बात कर रहे थे?
नहीं, उस समय नहीं। उन्होंने खुद को उन्मूलनवादी, एबॉलिशनिस्ट नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं गुलामी जहां है वहां उसे छेड़ने की बात नहीं कर रहा, लेकिन उसे फैलने नहीं देना है। ये फ्री सॉइल पोजिशन थी। उन्होंने कहा कि देश के संस्थापक भी यही चाहते थे।
अच्छा, और फिर आया 1860 का राष्ट्रपति चुनाव। रिपब्लिकन पार्टी से उनका नॉमिनेशन मिलना, ये भी काफी अप्रत्याशित माना जाता है।
हाँ, सत्ता पर तो यही लगता है। कई बड़े नाम थे दौड़ में, लेकिन डोनल समझाते हैं कि ये लिंकन की बहुत सोची समझी रणनीति थी।
कैसी रणनीति?
उन्होंने अपनी एक उदारवादी छवि बनाई। वो किसी एक गुट के कट्टर समर्थक नहीं थे। उनकी पश्चिमी पृष्ठभूमि भी काम आई, और सबसे बड़ी बात, वो कई गुटों के लिए दूसरी पसंद के तौर पर स्वीकार्य थे।
मतलब वो सबसे कम दुश्मन बनाने वाले उम्मीदवार थे।
हाँ, एक तरह से वो सबसे कम विवादास्पद थे, और पार्टी को लगा कि वो चुनाव जीतवा सकते हैं, तो उन्होंने नामांकन जीत लिया। लेकिन विडंबना देखिए।
क्या?
उनका चुनाव जाना ही दक्षिण के राज्यों के लिए आखिरी ट्रिगर बन गया। उन्हें लगा कि अब गुलामी खतरे में है, और उन्होंने अमेरिका से अलग होना शुरू कर दिया। गृह युद्ध का मंच तैयार हो गया।
तो यहां से शुरू होता है लिंकन का राष्ट्रपति काल, चरम उपलब्धियां और विरासत का दौर। लेकिन ये तो सचमुच आग का दरिया था। शुरुआत कैसी रही राष्ट्रपति के तौर पर?
बेहद मुश्किल। डोनाल्ड दिखाते हैं कि शुरुआत में लिंकन भी घटनाओं के भारी दबाव में थे। वो स्थिति की गंभीरता को समझ रहे थे। उनका पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य एक ही था, संघ को बचाना है, देश को टूटने नहीं देना है,
किसी भी कीमत पर।
हाँ, किसी भी कीमत पर। खासकर जो बॉर्डर स्टेट्स थे, केंटकी, मिजूरी जैसे राज्य जहां गुलामी थी पर वो अलग नहीं हुए थे, उन्हें साथ रखना बहुत जरूरी था।
फोर्ट सम्टर का क्या किस्सा है? वो कैसे उनकी सोच दिखाता है?
फोर्ट सम्टर दक्षिण कैरोलिना में एक किला था जो यूनियन के कब्जे में था। दक्षिणी सेना ने उसे घेर लिया। लिंकन ने सीधे सेना भेजने के बजाय वहां फंसे सैनिकों के लिए सिर्फ रसद, मतलब खाने पीने का सामान भेजा।
अच्छा, हमला नहीं किया?
नहीं। इससे क्या हुआ कि पहला गोला दक्षिणी सेना को चलाना पड़ा, हमला उन्हें करना पड़ा। इस एक कदम ने उत्तर के लोगों को गुस्से से भर दिया और लिंकन के पीछे एकजुट कर दिया। ये उनकी रणनीति थी।
कमांडर इन चीफ की भूमिका तो उनके लिए एकदम नई थी, मिलिट्री का कोई अनुभव नहीं था, इसे कैसे संभाला?
वो इसमें पूरी तरह डूब गए। डोनाल्ड बताते हैं कि वो रात रात भर सैन्य रणनीति की किताबें पढ़ते थे, नक्शे देखते थे, जनरलों से मिलते थे, तार भेजते थे।
लेकिन सही जनरल ढूंढने में उन्हें बहुत दिक्कत हुई।
बहुत ज्यादा, खासकर जॉर्ज मैक्लेरन के साथ। वो सेना तैयार करने में माहिर थे, लेकिन लड़ने से हिचकते थे। लिंकन उनसे बहुत फ्रस्ट्रेट हुए। उन्हें ऐसे जनरल चाहिए थे जो लड़ें, जो आक्रामक हों।
और साथ में उन्हें अपना कैबिनेट भी संभालना था, जिसमें उनके पुराने विरोधी भी थे, टीम ऑफ राइवल्स जिसे कहते हैं।
हाँ, विलियम सीवर्ड, सैमन चेज जैसे बड़े नेता जो खुद राष्ट्रपति बनना चाहते थे। उन सबको एक साथ लेकर चलना, उनके अहंकार को संभालना और उनसे काम लेना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी।
अब आते हैं मुक्ति उद्घोषणा पर, एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। डोनाल्ड इसे कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ एक नैतिक कदम था, दिल की आवाज?
डोनाल्ड का विश्लेषण थोड़ा अलग है। वो मानते हैं कि लिंकन गुलामी को नैतिक रूप से गलत मानते थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उद्घोषणा जारी करने का फैसला वो बहुत सोच समझकर, सही समय देकर लिया गया।
मतलब
ये कि ये सिर्फ नैतिक आवेग नहीं था, ये एक सैन्य जरूरत भी थी और राजनीतिक जरूरत भी। लिंकन ने एंटीटम की लड़ाई में यूनियन को थोड़ी बढ़त मिलने तक इंतजार किया ताकि ऐसा ना लगे कि यह हार या हताशा में उठाया गया कदम है।
और उन्होंने इसे पेश कैसे किया?
उन्होंने इसे कमांडर इन चीफ के तौर पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक युद्ध उपाय बताया, कहा कि यह संघ को बचाने के लिए जरूरी है। इससे दो बातें हुईं, एक तो कन्फेडरेसी का मनोबल टूटा और दूसरा विदेशों जैसे ब्रिटेन फ्रांस का कन्फेडरेसी को समर्थन देना मुश्किल हो गया।
तो ये उनकी व्यवहारिकता दिखाता है।
बिल्कुल, और उनकी वही नकारात्मक क्षमता, सही वक्त का इंतजार करना और फिर निर्णायक कदम उठाना।
गेटिसबर्ग का भाषण वो भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, छोटा सा भाषण है पर।
हाँ, नवंबर 1863 का गेटिसबर्ग एड्रेस, मुश्किल से 3 मिनट का, लेकिन शायद अमेरिकी इतिहास का सबसे प्रसिद्ध भाषण। डोनाल्ड बताते हैं कि इस भाषण ने लड़ाई का मतलब ही बदल दिया।
कैसे?
लिंकन ने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ राज्यों को जोड़ने के लिए नहीं है, ये लड़ाई है लोकतंत्र के भविष्य के लिए, लोगों की, लोगों द्वारा, लोगों के लिए सरकार, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल को बचाने के लिए। और उन्होंने स्वतंत्रता के नए जन्म, न्यू बर्थ ऑफ फ्रीडम की बात की। इसने युद्ध को एक नैतिक ऊंचाई दे दी।
और आखिरकार उन्हें यूलिसिस ग्रांट जैसा जनरल मिल गया।
हाँ, ग्रांट वो जनरल थे जो लड़ना जानते थे और जीतना चाहते थे। लिंकन ने उन्हें पूरी कमान सौंपी और उन पर भरोसा किया। ग्रांट ने वो आक्रामकता दिखाई जिसकी जरूरत थी।
1864 में उनका दोबारा चुनाव जीतना वो भी आसान नहीं था, युद्ध बहुत लंबा खिंच गया था।
बिल्कुल आसान नहीं था। 1864 की गर्मियों में तो लग रहा था कि लिंकन पक्का हारेंगे, लोग युद्ध से थक चुके थे, भारी नुकसान हो रहा था, लिंकन खुद भी अपनी हार मानकर चल रहे थे।
फिर क्या हुआ, पासा कैसे पलटा?
कुछ अहम सैन्य जीतें मिली, जैसे अटलांटा पर जनरल शर्मन का कब्जा, और लिंकन ने अपना राजनीतिक कौशल भी दिखाया, पार्टी को एकजुट रखा, तो वो दोबारा जीत गए।
और जीतने के बाद उनका दूसरा उद्घाटन भाषण
वो भी कमाल का था। उसमें जीत का घमंड नहीं था, बल्कि एक गहरी उदासी और सुलह की भावना थी। उन्होंने कहा, किसी के प्रति द्वेष नहीं, सबके लिए करुणा। ये आने वाले मुश्किल पुनर्निर्माण काल के लिए एक दिशा थी।
तो उनकी विरासत क्या है, अगर समेटना हो तो?
बहुत विशाल। सबसे पहले देश को टूटने से बचाया, संघ को अक्षुण्ण रखा, दूसरा गुलामी का अंत किया जिसे बाद में 13वें संशोधन से संवैधानिक रूप मिला, और तीसरा अमेरिकी राष्ट्रवाद को एक नई, ज्यादा समावेशी परिभाषा दी, लोकतंत्र और समानता के विचारों पर आधारित।
और उनकी हत्या?
वो एक भयानक त्रासदी थी। युद्ध खत्म होने के कुछ ही दिन बाद देश ने शायद वो एकमात्र नेता खो दिया जो उत्तर और दक्षिण के घावों को भर सकता था और शांति से देश को दोबारा जोड़ सकता था।
तो अगर हम लिंकन के मूल दर्शन और मूल्यों को समझने की कोशिश करें तो क्या बातें सामने आती हैं, क्या चीजें थी जो उन्हें गाइड करती थीं?
सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज थी संघ का संरक्षण, यूनियन। देश की एकता उनके लिए सबसे ऊपर थी, बाकी सब बाद में।
और इसके अलावा?
दूसरी बात उनकी जबरदस्त व्यवहारिकता। वो सिद्धांतवादी कम, यथार्थवादी ज्यादा थे। वो हमेशा पूछते थे, अभी क्या संभव है, क्या करने से काम बनेगा, बजाय इसके कि आदर्श क्या है।
कानून का सम्मान भी बहुत था उनमें।
हाँ, ये उनकी विग पृष्ठभूमि से आया था, कानून का सम्मान, संविधान का सम्मान। वो बदलाव चाहते थे पर कानूनी दायरे में, धीरे धीरे। हालांकि युद्ध ने उन्हें कई बार इस दायरे से बाहर जाने पर मजबूर किया।
गुलामी पर उनका नजरिया कैसे विकसित हुआ?
ये क्रमिक विकास था। शुरू में वो इसे नैतिक रूप से गलत मानते थे पर इसे तुरंत खत्म करने के पक्ष में नहीं थे। फिर वो इसके विस्तार के कट्टर विरोधी बने और अंत में युद्ध की परिस्थितियों ने उन्हें इसे जड़ से उखाड़ने पर मजबूर कर दिया।
लोकतंत्र में उनका गहरा विश्वास था।
बिल्कुल, वो खुद एक आम आदमी थे, गरीबी से उठे थे, तो उन्हें लोकतंत्र की शक्ति और अवसर की समानता में बहुत यकीन था। लोगों की सरकार का विचार उनके लिए सिर्फ नारा नहीं था।
और उनकी भाषा की ताकत?
हाँ, ये भी बहुत अहम है। भाषा की शक्ति को वो बखूबी समझते थे, कैसे सरल, सीधी लेकिन असरदार भाषा से लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंचा जा सकता है। उनके भाषण देखिए, तर्क भी है, भावना भी है, नैतिकता भी है।
एक और बात जो डोनाल्ड दिखाते हैं वो है उनका अवसाद से जूझना।
हाँ, जिसे उस समय मेलानकली या उदासी कहते थे। लिंकन जीवन भर इससे जूझते रहे। डोनाल्ड का मानना है कि शायद इसी निजी पीड़ा ने उनकी मानवीय सहानुभूति और लचीवेपन को और गहरा किया। वो दूसरों का दर्द बेहतर समझ पाते थे। इतनी निजी और राष्ट्रीय त्रासदियों के बावजूद टिके रहना असाधारण था।
अब अगर हम उन 3 सबसे अहम मोड़ों की बात करें जिन्होंने लिंकन के जीवन की दिशा बदल दी, जैसा डोनाल्ड की किताब बताती है, तीन महत्वपूर्ण मोड़, पहला कौन सा था?
देखो, फिर से जिंदा कर दिया और इसने लिंकन को, जो लगभग रिटायर हो चुके थे, वापस राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया, एक नैतिक गुस्से और एक राजनीतिक मिशन के साथ।
हाँ, ये तो सचमुच एक टर्निंग पॉइंट था। दूसरा?
दूसरा था फोर्ट सम्टर पर हमला और गृह युद्ध की शुरुआत 1861। इस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। इसने लिंकन को एक वकील और राजनेता से सीधे युद्धकालीन कमांडर इन चीफ बना दिया।
इसने उन्हें यथार्थ का सामना कराया।
बिल्कुल, इसने उन्हें दिखाया कि अब हालात उनके हाथ से निकल चुके हैं, अब उन्हें रिएक्ट करना होगा। और इसी घटना ने बिखरे हुए उत्तरी राज्यों को उनके पीछे एकजुट भी कर दिया।
और तीसरा निर्णायक मोड़?
तीसरा मेरे ख्याल से मुक्ति उद्घोषणा जारी करना, 1862-63। ये कदम दिखाता है कि कैसे हालात एक ऐसे नेता को भी, जो कानून का बहुत सम्मान करता था और धीरे चलना चाहता था, एक क्रांतिकारी कदम उठाने पर मजबूर कर सकते हैं।
किस लिए?
युद्ध जीतने के लिए और अंततः संघ को बचाने के लिए। इसने न सिर्फ युद्ध का नैतिक आधार बदल दिया, बल्कि लिंकन के खुद के नेतृत्व के विकास को भी दिखाया। वो परिस्थितियों के साथ विकसित हुए।
लिंकन का जीवन वाकई बहुत प्रेरणादायक है। आज के समय में हम सब उनके जीवन से क्या मानवीय सबक सीख सकते हैं? कुछ रिफ्लेक्शंस।
बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहला सबक तो है धैर्यवान और प्रतिक्रियाशील नेतृत्व का, मतलब हर चीज पर तुरंत कूद पड़ना ही लीडरशिप नहीं है।
हाँ, वो नेगेटिव कैपेबिलिटी वाली बात है।
वही, कभी कभी रुकना, सुनना, समझना और सही समय का इंतजार करना ज्यादा प्रभावी होता है। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो सकती है।
और दबाव में सीखना और बदलना,
ये दूसरा बड़ा सबक है, दबाव में विकास और अनुकूलनशीलता। लिंकन कोई परफेक्ट नेता बनकर नहीं आए थे, उन्होंने गलतियां की, खासकर जनरलों को चुनने में, लेकिन उन्होंने उन गलतियों से सीखा, अपनी अप्रोच बदली। ये दिखाता है कि लीडरशिप एक सीखने की प्रक्रिया है, कोई फिक्स्ड चीज नहीं।
कम्युनिकेशन का महत्व भी बार बार सामने आया।
बिल्कुल। तीसरा सबक, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण संवाद। लिंकन की भाषा सीधी थी, ईमानदार थी, वो लोगों से जुड़ पाते थे। आज के जमाने में जहां इतना शोर है, ये और भी जरूरी हो जाता है।
और वो मुश्किल लोगों को साधना, अपनी टीम को मैनेज करना।
हाँ, चौथा सबक, कठिन व्यक्तित्वों का प्रबंधन। उनकी टीम ऑफ राइवल्स को देखिए, इतने अलग अलग, इतने महत्वाकांक्षी लोग, लेकिन लिंकन ने उन्हें कॉमन लक्ष्य के लिए साथ काम करने पर मजबूर किया। ये बताता है कि मतभेदों को मैनेज करके भी आगे बढ़ा जा सकता है।
और शायद सबसे गहरा सबक, संकट में भी अपनी इंसानियत बचाए रखना।
निश्चित रूप से, ये पांचवा और सबसे अहम सबक है, संकट में मानवता, सहानुभूति और लचीलापन। लिंकन ने बहुत व्यक्तिगत दुख झेले, बेटे की मौत, पत्नी की मानसिक अस्थिरता, खुद का डिप्रेशन, देश भयानक गृह युद्ध से गुजर रहा था, फिर भी उन्होंने अपनी करुणा, अपनी सहानुभूति नहीं खोई। ये दिखाता है कि असली ताकत क्रूरता में नहीं, बल्कि मुश्किलों के बावजूद इंसान बने रहने में है।
तो इस पूरी गहरी बातचीत के अंत में, अगर हमें डेविड हर्बर्ट डोनाल्ड की लिंकन से तीन मुख्य बातें निकालनी हो, तीन अंतिम निष्कर्ष जो श्रोताओं के साथ रह जाएं, तो वो क्या होंगे?
पहली, मैं कहूंगा एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। लिंकन का जीवन ये दिखाता है कि गहरे से गहरे व्यक्तिगत दुख और निराशा के बीच भी सहानुभूति रखना, नैतिक साहस दिखाना और इंसानियत को बचाए रखना संभव है। यह हमें याद दिलाता है कि मुश्किल वक्त में भी मानवीय संबंध और करुणा कितनी जरूरी है।
ये बहुत जरूरी बात है। दूसरी क्या होगी?
दूसरी एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि, वो ये कि महान नेतृत्व अक्सर किसी बनी बनाई विचारधारा या फिक्स्ड प्लान से नहीं आता। ये आता है जबरदस्त व्यवहारिक समझ से, हालात के मुताबिक ढलने की क्षमता से, धैर्य से और घटनाओं पर प्रभावी ढंग से रिएक्ट करने की कला से, जिसे डोनाल्ड नेगेटिव क्षमता कहते हैं। सिद्धांत अपनी जगह है, पर असल दुनिया में यही व्यवहारिकता काम आती है।
और तीसरी, एक सार्वभौमिक सीख।
तीसरी एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि, वो ये कि लीडरशिप कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुछ खास लोगों में जन्म से होती है। ये एक सफर है, एक विकास यात्रा है। लिंकन दिखाते हैं कि साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले लोग भी, अगर उनमें असाधारण अनुकूलनशीलता हो, नैतिक साहस हो, लगातार सीखने की इच्छा हो और व्यवहारिक बुद्धि हो, तो वो बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और इतिहास बना सकते हैं।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ, जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।